युग संचार के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता सूचना प्रौद्योगिकी उपग्रह और भारत। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। आज बड़े बड़े अलग अलग उद्योगों तथा संचार, परिवहन, कृषि, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी, चिकित्सा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति और विकास ने भारत को समर्थ और सक्षम देशों की सूची में शामिल करा दिया है। एक सूचना प्रौद्योगिकी जैसा क्षेत्र ही रह गया था जिसमें भारत अभी भी शिशु अवस्था में ही था, जिसका महत्वपूर्ण कारण रहा है टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, इंटरनेट और ईमेल आदि का देश में प्रयोग होने के बाद भी कुछ ही लोगों द्वारा इनका सार्थक उपयोग करना। कई लोगों को तो आज भी इनके विषय में सही और उपयोगी जानकारी नहीं है। कई सरकारी और निजी कार्यालयों में व्यक्तियों के प्रशिक्षित न होने के कारण ही ये कार्यालय भी इनके प्रयोग से वंचित दिखाई पड़ते हैं। सूचना प्राप्त करने और संदेश भेजने के इन आम माध्यमों के अलावा आज कई कार्यालय अभी भी कंप्यूटर विहीन ही दिखाई पड़ते हैं। जब शहरों की ये स्थिति है तो गांवों के शैक्षणिक संस्थानों का क्या आलम होगा। यद्यपि अब शहरों के कई शैक्षणिक संस्थान और कार्यालय धीरे धीरे कम्प्यूटरीकृत होते जा रहे हैं, लेकिन जिस गति से ऐसा हो रहा है वह पर्याप्त गति नहीं है। दरअसल भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ 1963 में एक लघु रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ हुआ था, जिसे केरल के थुम्बा नामक स्थान से छोड़ा गया था। देश के वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों में दिन रात रत रहे और धीरे धीरे देश की सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य गति पकड़ता गया। भारतीय उपग्रह रोहिणी को वर्ष 1968 में जब पृथ्वी की कक्षा में स्थापना के लिए स्वदेश में ही रॉकेट विकसित करने की बात सामने आई, तो कुछ कठिनाइयों के सामने आने के बाद 1972 में सोवियत संघ तथा भारत के मध्य हुए समझौतों के फलस्वरूप 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट इंटरकॉस्मोस ने भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को धरती की कक्षा में स्थापित किया। इस उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही तकनीकी विकास के क्षेत्र में भारत ने विश्व में 11वां और विकासशील देशों में दूसरा स्थान बना लिया। इसके पश्चात आर्यभट्ट की सफलता से उत्साहित होकर 7 जून 1979 को उसी रूसी प्रक्षेपण केंद्र से भास्कर 1 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह अपने साथ 2 रिमोट सेंसिंग लेके गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था इसकी टेलीविजन कैमरा प्रणाली और माइक्रोवेव रेडियोमीटर प्रणाली, जिसने अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान किए, जिससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करना और हिमस्खलन, जल विज्ञान और वन विज्ञान आदि का गूढ़ अध्ययन करना संभव हुआ है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में तो तभी उतर आया था जब उसने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया था, लेकिन यहां यह बात उल्लेखनीय है कि आर्यभट्ट सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह नहीं था, किंतु आर्यभट्ट और भास्कर 1 के निर्माण के दौरान ही सुदूर संवेदन प्रणाली निर्माण के बारे में विचार बनने लगा था, क्योंकि भास्कर 1 उपग्रह अपने साथ 2 सुदूर संवेदन लेकर गया था। सुदूर संवेदन लगे उपग्रहों में लगे विशेष तथा शक्तिशाली कैमरों के जरिए एक बहुत बड़े भूभाग के चित्र प्राप्त होते हैं, इसलिए इन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों आदि को ग्रहण करने के लिए हाईटेक सिटी हैदराबाद के निकट एक भू केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर, खड़गपुर, देहरादून, बेंगलोर तथा नागपुर में स्थापित किए गए हैं। इन उपग्रहों में लगे सुदूर संवेदन उपकरणों की विशेषता यह है कि ये प्रत्येक मौसम में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समुद्री सतह का तापमान, समुद्र की स्थिति, क्षेत्रों की जलवाष्प की मात्रा तथा बाढ़ आने, बर्फ गिरने और पिघलने जैसी स्थितियों का वृहद अध्ययन कर पाना संभव हुआ है। साथ ही फसलों का आकलन, भूवर्गीकरण, भूमि विश्लेषण, मरुस्थल का विस्तार, पेट्रोलियम और खनिज की खोज, शहरी भूमि का उपयोग और प्रदूषण आदि अध्ययन सहज और सुगम हो गया है। यदि हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर इनका अध्ययन करना होगा, जैसे समुद्री सतह का तापमान। उपग्रह से प्राप्त चित्रों तथा आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है कि समुद्र की सतह का तापमान कितना रहेगा, तथा यह भी पता लगाया जा सकता है कि किस दिन समुद्र की स्थिति क्या रहेगी, अर्थात समुद्र शांत रहेगा या समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी या तूफान आएगा। क्षेत्रों की जलवाष्प की मात्रा के अंतर्गत उपग्रहों से प्राप्त चित्रों से किसी भी क्षेत्र की जलवाष्प की स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र कितनी मात्रा में जल का वाष्पीकरण कर रहा है, तथा ये जल वाष्पीकरण क्यों हो रहा है, कौन से क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। यही नहीं, सुदूर संवेदन उपकरण के माध्यम से उपग्रह द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि किस क्षेत्र में वर्षा होगी या कौन सा क्षेत्र सूखा रहेगा, बर्फ गिरेगी या नहीं, या बर्फ कब पिघलना शुरू होगी। यही नहीं बल्कि उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के अनुसार यह भी अध्ययन किया जा सकता है कि कहां पर बादल छाए रहेंगे और किस क्षेत्र में तेज चिलचिलाती धूप पड़ेगी। शहरी भूमि कितनी है, उनका उपयोग कहां तक किया जा सकता है। यही नहीं, उपग्रहों से प्राप्त चित्रों से इस बात का अध्ययन भी किया जा सकता है कि किस क्षेत्र के जंगल समतल भूमि बदलते जा रहे हैं और किस क्षेत्र की भूमि समतल से जंगलों में बदलती जा रही है और क्यों। इन सभी विषयों का सतत अध्ययन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्यभट्ट से लेकर अब तक स्थापित किए गए उपग्रहों को स्थापित करने की सफलताओं को भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में अपना पहला रॉकेट सोवियत संघ की मदद से छोड़ा था, लेकिन अब 3 भारतीय उपग्रह स्वयं अपने प्रक्षेपण यानों से छोड़े जा चुके हैं। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधानों और कार्यक्रमों के विकास और उन्नति का क्रम यहीं नहीं थम जाता, बल्कि नित नई योजनाओं के साथ क्रमशः आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमाण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को देश के दूसरे उपग्रह मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र का शुभारंभ। भोपाल और देश के इतिहास में 11 अप्रैल 2005 का दिन कालजयी इतिहास के रूप में दर्ज हो गया है, जब यहां उपग्रहों के नवनिर्मित मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र का शुभारंभ इससे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉ जी माधवन नायर ने किया। कर्नाटक में हसन के बाद देश में यह दूसरा केंद्र है जहां से 2 उपग्रहों इनसेट 3B और एजुसेट को नियंत्रित किया जाएगा। इस गरिमामय अवसर पर डॉ जी माधवन नायर ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा यानी टेली एजुकेशन तथा दूरस्थ चिकित्सा सुविधा यानी टेली मेडिसिन सुविधा जल्दी ही आरंभ होने जा रही है। बेंगलोर के हसन के बाद देश में अपनी तरह के इस दूसरे केंद्र से फिलहाल 2 उपग्रहों इनसेट 3B और एजुसेट के नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर में बने इस मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र के स्थापित होने का कारण है उपग्रहों की लगातार बढ़ती संख्या। उपग्रहों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए एक और नियंत्रण केंद्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसका परिणाम रहा इस नियंत्रण केंद्र की स्थापना। फिलहाल यहां से 2 उपग्रहों को नियंत्रित किया जाएगा और शीघ्र ही इस केंद्र से 6 उपग्रह नियंत्रित करने की सुविधा हो जाएगी। हासन और भोपाल को इस तरह इस प्रणाली से जोड़ा गया है कि संपूर्ण आंकड़ों का आदान प्रदान हो सकता है। भारत में सन 2001 में उपग्रह आधारित टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। इस सुविधा से देश के बड़े अस्पतालों को दूरस्थ अंचलों में स्थित जिला और छोटे अस्पतालों से जोड़ा गया है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश में भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही शीघ्र ही टेलीमेडिसिन मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में शिक्षा के प्रसार के लिए टेली एजुकेशन भी शुरू किया जा रहा है। शुरू में प्रदेश के 50 कॉलेजों को इससे जोड़ा जाएगा। भोपाल का यह मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र 50 एकड़ जमीन पर केवल 15 महीनों में बनकर तैयार हो गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुख्य नियंत्रण केंद्र के निर्माण पर 40 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आइए अब कुछ बातें करें सूचना प्रौद्योगिकी की। सूचना प्रौद्योगिकी में हमारे पिछड़ने का एक कारण सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हमारे वैज्ञानिकों के समक्ष आने वाली समस्याएं भी रही हैं। दरअसल हमारे सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े वैज्ञानिकों के समक्ष जो समस्याएं आती हैं, वे अन्य उद्योगों में कार्यरत वैज्ञानिकों की तुलना में कुछ अलग किस्म की होती हैं। सूचना वैज्ञानिकों के लिए इन समस्याओं का कोई भी हल ढूंढना लगभग असंभव होता है। इसका मुख्य कारण है उचित मानव संसाधन प्रबंधन का न होना। जब भी इस क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आती है तो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी उचित प्रशिक्षण और शिक्षा के अभाव में बीच में ही थम जाती है। इस तरह आखिर कब तक हम प्रशिक्षण के विषय में दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इसके लिए हमें मानकीकृत शैक्षिक अवसंरचना का निर्माण करना ही होगा, जिसके द्वारा अनगिनत विद्यार्थी नई नई धारणाओं के साथ उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महारत हासिल कर सकेंगे।